भगवते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नमस्कंद छठा अध्याय। आज से हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है सौबरी मुनि का पतन। श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य नहीं है, मैं उसका अनुवाद पढ़ के फिर हम श्लोक संख्या 2 का उच्चारण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप के प्रश्नदश नामक पुत्र हुआ और प्रश्नदश के रथितर नामक पुत्र हुआ। रथितरस्य प्रजस्य भार्यायां तन्तव्यर्थिता अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनासुतान्। रथितरस्य अप्रजस्य भार्यायां तन्वेर्थिता अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनासुतान्। रथितरस्य अप्रजस्य भार्यायां तन्तवेत्थिता अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनासुतान्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की रथितरस्य रथितर की अप्रजस्य निसंतान भार्यायाम अपनी पत्नी के तंतवे संतान वृद्धि के लिए अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर अंगिरा अंगिरा ऋषि जन्यामास उत्पन्न किया ब्रह्मवर्चस्विनः ब्राह्मण गुणों से युक्त सुतान पुत्रों को। रथितर निसंतान था, अतएव उसने अंगिरा ऋषि से उसके लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए। ये सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से संबंध थे। तात्पर्य, वैदिक युग में कभी कभी निम्न कुण वाले पुरुष की पत्नी से अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए किसी उच्च पुरुष को बुलाया जाता था। ऐसी स्थिति में स्त्री की तुलना खेत से की जाती है। खेत वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अन्न उपजाने का काम सौंप सकता है, किंतु उस खेत से जो अन्न उपजता है वह खेत के स्वामी का होता है। इसी प्रकार स्त्री को कभी कभी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण करना होता था, किंतु इस तरह से उत्पन्न पुत्र उसके पति के पुत्र कहलाते थे। ये पुत्र क्षात्र जात कहलाते थे। चूंकि रथितर का के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने इस विधि का लाभ उठाया। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में 5वें अध्याय तक हमने दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा सुनी थी, जिसे बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त हुई थी और अम्बरीश महाराज के माध्यम से भगवान ने भक्ति योग की महिमा को स्थापित किया। और अब आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज के वंश की आगे वंशावली का वर्णन कर रहे हैं। और क्योंकि इस वंशावली में राजा मंदार का वर्णन आएगा, तो राजा मंदाता का वर्णन आएगा, तो राजा मंदाता के प्रसंग में सौबरी मुनि का भी वर्णन आएगा। तो इस प्रसंग में बता रहे हैं कि आज के 2 श्लोकों में कि अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप के प्रश्नदशक नामक पुत्र हुए, प्रश्नदशक के रथितर नामक पुत्र हुए, यानी कि परपोत्र हो गए। और ये रथितर जो थे इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, रथितर अप्रजस्य उनकी कोई संतान नहीं थी, भार्यायाम तंतवे स्थिता, तो इन्होंने अपनी पत्नी के घर में संतान की उत्पत्ति के लिए अंगिरा ऋषि के पास गए, उनसे निवेदन किया जन्यामास संतान उत्पन्न करने के लिए। और जो पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मवर्चस्विना, पूरे ब्राह्मण गुणों से वो संपन्न थे। तो कोई कह सकता है श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और परमहंस सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित जो मृत्यु के कगार पे हैं, ये प्रसंग छेड़ने की क्या जरूरत है कि एक राजा था रथीधर, जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो अंगिरा ऋषि के पास गया कि मेरी पत्नी में संतान उत्पन्न कर दो। इसकी क्या जरूरत थी इतना बोलने की? और कोई नया व्यक्ति सुने के बोले अच्छी कैसी बातें लिखी होती हैं भागवतम पुराण में, आप सुबह सुबह मंदिर में आके ऐसी बातों की चर्चा करते हैं कि किसी की संतान नहीं हो रही तो किसी ऋषि के पास जाके बोला मेरी पत्नी में संतान उत्पन्न कर दो। कोई व्यक्ति नया आएगा आज की क्लास में, हो सकते हैं कि लोग बिल्कुल नए भी हों, तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा उनको, ये हमने तो सुना था यहाँ कृष्ण कथा होती है लेकिन ये तो कैसे विषय है। लेकिन भागवतम अमल पुराण है और क्योंकि सब कुछ कृष्ण से संबंधित है इसलिए सब कुछ इसको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से ही इसको स्वीकार करना चाहिए ना। ये भागवत अचिंत्य ईश्वर बुद्धिजार, इसको ईश्वर बुद्धि से सुनना चाहिए। सही ते जाने भागवत रे सार, वही भागवत का सार जान सकता है, भागवत का समझने के लिए कृष्ण से अभिन्न है। तो आज के इस प्रसंग में मैं भी पहले जब श्लोक पढ़ा कल रात को तो कन्फ्यूज था क्या बोलें इसके ऊपर, थोड़ा जटिल विषय है। तो जो आज चर्चा करेंगे उसका मैंने शीर्षक दिया है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। और इस फैमिली प्लानिंग के तीन एस्पेक्ट्स हम चर्चा करेंगे, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल। देखें कितना हम इसमें अपना जस्टिस कर पाते हैं, आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। तो यहाँ पे देखा कि वैदिक संस्कृति में प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैदिक युग में कभी कभी निम्न कुल वाले पुरुष की पत्नी से अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किसी उच्च पुरुष को बुलाया जाता था। ये वैदिक युग में था लेकिन आज के कलयुग में ये संभव नहीं है और इसकी आज्ञा भी नहीं दी गई। जब चांद काजी और महाप्रभु के आपस में चर्चा हो रही थी तो चांद काजी से जब महाप्रभु ने बोला कि आप गौ हत्या क्यों करते हैं, तो चांद काजी ने बोला आपके यहाँ भी तो ब्राह्मणगण गौ की हत्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो फिर महाप्रभु ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से श्लोक उदित किया कि अश्वमेघ गवालंबम संन्यास फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयत। पांच चीजें कलयुग में इनकी परमिशन नहीं दी गई, अश्वमेघ यज्ञ करना, अश्व को उसके साथ घोड़े को अग्नि में डालना वो यज्ञ अलाउड नहीं है, गवालंबन गाय को भी हम हत्या नहीं कर सकते यज्ञ में डाल के, संन्यास लेना तीसरा, चौथा फल पैतृकम पितरों को मांसाहार मीट इत्यादि का अर्पण करना, और पांचवा देवरेण सुतोपत्तिम अपने पति के भाई से संतान की उत्पत्ति करवाना। ये पांचों के पांचों कलयुग में वर्जित है क्योंकि इस कार्य को करने के लिए जैसे कि राजा रथीधर ने अंगिरा ऋषि से ये निवेदन किया कि मेरी पत्नी के घर में संतान उत्पन्न करें, इसके लिए बहुत ही उत्कृष्ट चेतना चाहिए और बहुत ब्रॉड मेंटेलिटी चाहिए। एक बड़े हृदय का व्यक्ति जिसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या था रथीधर राजा का, कि आगे वंश को बढ़ाना है। और वंश को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि की रचना का उद्देश्य यही है कि मानव समाज की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर मिल सके और वो अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम जा सके। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में परिवार नियोजन के नाम पे, क्योंकि भगवतहीनता है, लोग भगवान को सब कारणों का कारण नहीं मानते, तो आज के आधुनिक समाज में ये गलत भ्रांति आ गई कि जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी समस्याएं होंगी, हर जगह बड़ी बड़ी लाइनें हैं, हर जगह रिसोर्सेज की किल्लत है, कंपटीशन है, तो क्या करो जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम रहेंगे खुश रहेंगे सुखी रहेंगे, बहुत से रिसोर्सेज हमें मिलेंगे जिसको हम अपने इच्छा से शोषण कर सकते हैं। लेकिन हम दे सकते हैं, जब से परिवार नियोजन की स्कीम्स भारत में, चाइना में इत्यादि में लगी है, हमारे जो सुख कम हुए हैं कि बड़े हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार था कि बड़ा परिवार सुखी परिवार था, हाँ इसमें सोचने की बात ही नहीं है। और अब पाश्चात्य देशों में वो अब यूनाइटेड फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं कि बड़े बड़े परिवार रखे, तो ये भगवतहीनता दिखाती है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जनसंख्या समस्या नहीं है, उस पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है ये मैटर करता है। तो फैमिली प्लानिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द क्वांटिटी, फैमिली प्लानिंग इज अबाउट मॉनिटरिंग द क्वालिटी, कि एक अच्छी प्रोजनी उत्पन्न हो, अच्छी संतान उत्पन्न हो, ये ये प्लानिंग करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये इसीलिए राजा रथीधर अंगिरा ऋषि के पास गए, अपने से उत्कृष्ट व्यक्ति के पास गए कि आप आइए, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है मैं संतान उत्पन्न कर पाऊं, आप आइए और एक उत्कृष्ट संतान की उत्पन्न कीजिए जिससे कि वो जनता की सेवा कर सके। क्या चेतना है आप देखिए। तो इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के पास किस चीज की कमी है, क्योंकि भगवतहीनता है, लोग समझते हैं कि हम सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन उपनिषदों में क्या बताया गया, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक है लेकिन कईयों का वो पालन करता है, असंख्य जीवों का पालन करने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण में है। तो अब कोई अगर ऐसा कह रहा है नहीं नहीं अधिक जनसंख्या होने से समस्या है, तो भगवान की भगवत्ता पे उसको विश्वास नहीं है, वो समझते हैं कि हम पालन करने वाले हैं। तो इसलिए रियल फैमिली प्लानिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड प्रोजेनी, अच्छी क्वालिटी के, और उसके लिए प्लानिंग करना, ये मनुष्य जीवन है। और कैसे उसके लिए प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष की आवश्यकता है, और स्त्री की तुलना उन्होंने एक खेत से की और बोले कि खेत में खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि आइए आप भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, लेकिन जो फसल उत्पन्न होगी किसकी मानी जाएगी, उस मालिक की मानी जाएगी। तो कितना देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म, हमारी वैदिक संस्कृति कितनी ब्रॉड है, आप देखिए कितना ब्रॉड मेंटेलिटी है। आज के समय में इसको व्यभिचार बताया जाएगा, लेकिन राजा रथीधर के और उनकी रानी के हृदय में कोई कपट नहीं है, केवल एकमात्र उच्च उद्देश्य है कि अच्छी संतान उत्पन्न करके आगे प्रजा का कैसे सेवा कर सकते हैं। तो अगर अच्छी संतान उत्पन्न करनी है तो निश्चित रूप से पुरुष और स्त्री की चेतना को शुद्ध होना पड़ेगा। इसीलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री की तुलना खेत से की गई है, तो इस खेत को बड़ा सुरक्षित रखा जाता था ताकि इसमें कोई तरह तरह के खरपतवार उत्पन्न ना हो, उसकी चेतना शुद्ध रहे ताकि आगे जाके संतान अच्छी उत्पन्न हो और वही संतान आगे जाके इस संस्कृति को आगे बढ़ाएगी और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत दुख होता है, हम आधुनिक समाज में बाहर जाते हैं, जो स्त्रियों की स्थिति है बहुत ही दुख देने वाली है, शॉकिंग है, शोक देने वाली है, और समझ में नहीं आता क्या समाधान होगा। और हम देखते हैं कि जो नई जनसंख्या आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, उनकी आप देखिए क्या मेंटेलिटी है ना, अखबारों में आप पढ़ते हैं किस प्रकार से, कोई बताया था रियान स्कूल में पीछे 11वीं का स्कूल क्लास के लड़के ने दूसरी क्लास के बच्चे का गला काट दिया, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में बैठना नहीं था, एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने थे, मर्डर कर दिया छोटे बच्चे का। क्या मानसिकता रही होगी आप सोचिए, छोटे से बच्चे का गला काटने के लिए कितने स्तर नीचे गिर गया होगा आप देखिए। अभी हम कहेंगे भगवता मैराथन में गए तो किसी ने बताया कि उनके बच्चे ने शेयर किया कि हम 8वीं क्लास में हैं और 8वीं क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो ड्रिंकिंग ना करता हो, मदिरापान ना करता हो। ये ऐसी स्थिति है, क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री की चेतना बहुत दूषित होती है ना, और विशेषकर स्त्री को जिसको जिससे गर्भ में बच्चा होता है उनकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। अब स्त्रियां मदिरापान कर रही हैं, हमें कई फैमिलीज वगैरह लाइक शेयर कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे वैश्य परिवारों में जिनमें अच्छे संस्कार होते थे, वहाँ भी अब एक फैशन बन गया है पार्टीज में मदिरापान करना, मांसाहार करना, धूम्रपान करना। और ये आप नहीं कर रहे हैं तो आप अप टू डेट नहीं हैं, आउटडेटेड हैं, और सोसाइटी में चलने फिरने लायक नहीं रहे आप। ये स्थिति है। जय श्री राधा राधिका रमन, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और अगर स्त्री बुरा मत मानिए, मैं कोई ऐसे कठोर शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक हम समस्या को समझने का प्रयास करें, और कोई माता जी वो मांसाहार कर रही है, मदिरापान कर रही है, तो उसका जो गर्भ है वो क्या बन गया, एक शमशान घाट। शमशान घाट में क्या लाशें तो रहती हैं, और शमशान घाट से क्या उत्पन्न होता है, भूत पिशाच। तो संतान भी भूत की तरह होती है, इसलिए लोग बोलते हैं एक ही संतान, एक ही भूत चाहिए घर में, उसको संभालना मुश्किल होगा, और उस भूत को लाके भी फिर दुखी हो जाते हैं, फिर हमारे आते हैं, इसको लीजिए, पकड़िए इसको, सब कुछ कर दीजिए। कैसे कर देंगे, नस्ल ही खराब है, डिजाइन ही गलत है, उसमें कितनी ठोका पीटी करके उसको ठीक कर सकते हैं, इट्स बिग प्रॉब्लम। और आगे जाके पाश्चात्य देशों में देखिए कैसे मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, और हम उनसे सीख नहीं रहे, हम उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा आंदोलन में हम लोग भाग लेते हैं, हमारा कर्तव्य है। प्रभुपाद कहते हैं हमारा प्रचार होगा एजुकेशन, डिवोशन एंड कल्चर से, शिक्षा देने से, भक्ति का प्रचार करके, और सबसे महत्वपूर्ण भाव है संस्कृति से, हमारे लाइफस्टाइल से। और हम देखते हैं भक्तों के परिवार में भी आधुनिक समाज का कितना प्रभाव पड़ रहा है। आप मानते हैं कि नहीं मानते कि हम भक्तों के जीवन शैली में पाश्चात्य असभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है। हमारे रहन सहन के तरीके, हमारी वेशभूषाएं, हमारे जो फैशन स्टाइल्स, ये सब, क्योंकि आजकल ये चल रहा है और वो पाश्चात्य देश से, तो हम कॉपी कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हम अपनी शुद्धता पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं और भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे जो हम समाज में जो देना चाहिए हमें, हम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए भक्तों के जीवन में महत्वपूर्ण है कि हमारी उत्कृष्ट फिलॉसफी है, उस उत्कृष्ट फिलॉसफी को अपने जीवन में भी उतारें और एक उदाहरण स्थापित करें कल्चर का, जिससे कि लोग इसको पालन कर सकें। बहुत बड़ी चुनौती है, ये आसान नहीं है। आधुनिक स्त्रियों को आकर्षित करना कृष्ण भावना भावित की तरफ, और उनको हम बोले सीधा आप घूंघट डालिए और ये सब करिए, संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही टैक्टफुली और बहुत ही इंटेलिजेंटली कैसे इस ट्रेडिशन को पैकेज करना है मॉडर्न, उसमें और सार को खोना नहीं है, लेकिन डिटेल्स को हम चेंज करते रहें। ये बहुत बड़ी इसमें बुद्धिमत्ता चाहिए और साथ साथ एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहें। लेकिन कुल मिला के हमें ये समझना चाहिए, इस प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। लोग बोलते हैं अगर भक्त भी लोग समझने लगे ऐसा चलता है जी चलता है, तो फिर हमारी भक्ति भी चलती चलती हो जाएगी, हरि बोल हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर हम अपने इसमें केयरफुल नहीं रहे तो प्रचार, माया का प्रचार इतनी तेजी से चल रहा है, जैसे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं माया तो 365 दिन मैराथन में है, 365 दिन हमें प्रभावित करने के लिए प्रचार कर रही है, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज कहते हैं, हालांकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर मुझे संतान उत्पन्न करनी पड़े तो मैं 100 से अधिक बच्चे पैदा कर दूंगा, लेकिन सारे सारे कैसे होंगे, कृष्णा भावना भावे, है ना। और कृष्णा भावना भावे बच्चों की संख्या हमें बढ़ानी है, तभी तो समाज में सुधार आएगा। और कृष्णा भावना भावित बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए खुद कृष्णा भावना भावित होना पड़ेगा, ऐसे आसमान से तो टपकेंगे नहीं कृष्णा भावना भावित बच्चे, कि हम जो मर्जी करते रहे और बच्चे कृष्णा भावना भावित हो जाए। माता पिता यही आशा रखते हैं, इसको सुधार लो किसी ढंग से, ऐसे नहीं सुधरेगा, पहले हमें अपने आप को, अपनी चेतना को सुधारना होगा। और हम देखते हैं शास्त्रों में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जिस चेतना के साथ पुरुष और स्त्री मिलते हैं उसी चेतना से संतान की उत्पत्ति होती है। और इसके उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं। महाभारत में हम जानते हैं राजा शंतनु की पत्नी सत्यवती, और शंतनु की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र थे चित्रांगद और विचित्र वीर्य, और दुर्भाग्यवश चित्रांगद और विचित्र वीर्य कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाए, और उनकी पत्नी विचित्र वीर्य की पत्नियां अंबिका और अंबालिका निस्संतान थी, और सत्यवती को बहुत चिंता हो रही थी कि आगे कुरुवंश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने भीष्म से कहा कि तुम संतान उत्पन्न करो। भीष्म ने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो सत्यवती ने अपने पहले पुत्र जो कि पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे व्यास देव जी को बुलाया, और व्यास देव जी ने उनकी मदद की, और जब पहले वो अंबिका से संग करने गए तो व्यास देव जी सीधा हिमालय से तपस्या करके आ रहे थे, मैले कुचैले कपड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, और शरीर से दुर्गंध आ रही है और बहुत भयानक लग रहे थे। अंबिका ने उसको देखा तो बहुत घबरा गई, बोले ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा, उसने आंखें बंद कर ली। और जब व्याजे बाहर आए तो सत्यवती ने पूछा, तो व्याजे ने कहा ये संतान उत्पन्न होगी जिसपे 10,000 हाथियों का बल होगा, लेकिन होगा ये अंधा। तो बेचारी सत्यवती बहुत परेशान हो गई, बोले कृपया करके अंबालिका के घर में भी डालिए, और अंबालिका को समझा दिया गया कि तुम ऐसे आंखें बंद मत करना। और फिर व्यासदेव गए उसी स्थिति में तपस्वी करके आ रहे थे, और अंबालिका ने भी जब देखा उसे आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन घबराहट में उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। और फिर व्यास जी ने कहा यह संतान भी बहुत बलशाली होगा, लेकिन इसका रंग होगा पीला और ये कहलाएगा पांडु। सत्यवती जी को फिर बड़ी चिंता हो गई, बोले पता नहीं पीला होगा कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन एक ही संतान है और होनी चाहिए। तो बोला कृपया करके दोबारा से अंबिका को आप गर्भवती करिए। तो व्यास जी एक साल बाद फिर आए, और अंबिका से संग करने के लिए, लेकिन अंबिका ने बोला अब मेरे में हिम्मत नहीं है। उन्होंने क्या किया, चाल चली, अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। दासी बहुत सरल स्वभाव की थी, जैसे उसने व्यासदेव को देखा उन्होंने बहुत उसका सत्कार किया, उनकी पूजा की और व्यासदेव जी हृदय से बहुत प्रसन्न हुए। और उसका संग करने के बाद उन्होंने सत्यवती को बताया ये अंबिका नहीं दासी थी, लेकिन ये जो पुत्र होगा ये बहुत बुद्धिमान होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा, तो वो कहलाए विदुर। और इस तरह से देखते हैं पिता एक ही थे व्यासदेव, लेकिन तीनों जो स्त्रियां थी उनकी चेतना अलग अलग थी और तीनों संतान उसी प्रकार से उत्पन्न हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को पांडु राजा बने, लेकिन पांडु की रुचि ज़्यादा राज्य करने में नहीं थी, वो अपने दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए और वन में उनसे गलती से एक हिरण के रूप में जो किंडम ऋषि थे उनकी हत्या हो गई और किंडम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम भी अगर अपनी पत्नी का संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुनकर पांडु जी ने तभी एकदम वानप्रस्थ का पालन किया, अपनी दोनों पत्नियों के साथ घोर तपस्या करते थे और उनका संग नहीं करते थे। लेकिन पांडु जी के हृदय में एक बात उठी कि अगर मेरी संतान नहीं होगी तो आगे मेरा तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। तो पांडु जी उस वन में क्योंकि थे तो ऋषियों के पास गए कि आप आइए कुंती और माद्री में संतान उत्पन्न कीजिए। तो ऋषिगण ने मान लिया, हम मान गए। लेकिन जब वो कुंती के पास आए, कुंती ने कहा मैं सोच भी नहीं सकती कोई पर पुरुष मुझे छुए। पांडु ने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जब पांडु ने बहुत इस पे जोर दिया तो कुंती महारानी ने बताया कि उनको दुर्वासा मुनि से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी देव को बुला सकती हूँ और संतान उत्पन्न कर सकती हूँ। ये सुनकर पांडु को गुस्सा नहीं आया, ये विवाह से पहले क्यों नहीं बताया मुझे आपने। और कुंती ने यह भी बता दिया कि मैं इसकी टेस्टिंग भी कर चुकी हूँ इस मंत्र की। आप देखिए इन डीलिंग्स हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की मेंटेलिटी और चेतना होती थी। और पांडु बड़े प्रसन्न हुए, अरे अच्छा संतान की उत्पत्ति करनी है, आगे वंश को बढ़ाना है, प्रजा की सेवा करनी है, बुलाओ देवता गणों को और संतान उत्पन्न करो। और कुंती महारानी घबरा रही थी, कुंती महारानी की वजह से फैसिलिटी थी, कहती नहीं है, लेकिन पति ने आज्ञा दी तो उन्होंने किया। और उन्होंने बोला कैसी संतान चाहिए, किस देवता को बुलाऊं। पांडु जी ने सोचा राजा कैसा होना चाहिए, भविष्य का राजा। बोले भविष्य के राजा को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए, तो धर्म को बुलाओ। कुंती महारानी ने मंत्र के उच्चारण की, धर्म अपने रथ पर प्रकट हो गए और अपने आध्यात्मिक शक्तियों से उन्होंने कुंती महारानी को गर्भवती किया। और जब युधिष्ठिर जी की उत्पत्ति हुई, आकाशवाणी हुई कि ये जो संतान है पूरा धर्म का ज्ञाता होगा, सत्यवान होगा और पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। उसके बाद एक वर्ष के बाद पांडु जी की इच्छा हुई, एक संतान नहीं और चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, राजा को धर्म का ज्ञाता तो होना ही चाहिए लेकिन उसमें शक्ति भी बहुत होनी चाहिए। तो कुंती ने बोला आप किसको बुलाओ, बोलो वायुदेव को बुलाओ। तो वायुदेव आए और फिर किसकी उत्पत्ति हुई, भीम की। और फिर से आकाशवाणी हुई इतना बड़ा योद्धा होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि बड़े से बड़े दुष्शक्तिशाली राजाओं का संहार कर देगा। और बचपन में जब एक बार कुंती महारानी भीम को गोद में लेके बैठी थी, साथ में पांडु बैठे थे, तो एक शेर आ गया वहां पे और उसने जोर से उसने चिल्लाया। शेर के संगार को सुनकर कुंती महारानी घबरा गई और उनके हाथ से भीम छूट गए और ऊपर पहाड़ से भीम नीचे गिरे और पांडु भाग के नीचे जा रहे हैं बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन जब तक पांडु पहुंचते हैं भीम बड़ी चट्टान पे गिर चुके थे और बड़ी चट्टान चकनाचूर हो गई और भीम आराम से इतना बल था भीम में, तो वायु के पुत्र थे। उसके बाद भी पांडु ने सोचा नहीं, मेरे दो पुत्र हो गए, एक धर्म का ज्ञाता एक बहुत शक्तिशाली, ये भी ठीक नहीं है, और भी चाहिए। उन्हें बोले कि हम जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता मिलती है प्रयास करने से, प्रयासों की सफलता निर्भर करती है हमारे भाग्य पे और भाग्य के नियंता हैं स्वयं भगवान कृष्ण। तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो शक्तिशाली भी हो, वीर भी हो, धर्म का भी ज्ञाता हो लेकिन भगवान का भक्त हो। और उन्होंने सोचा इंद्र है देवताओं में जो भगवान के भक्त है, विष्णु के लिए यज्ञ करते रहते हैं। तो ऋषिगणों के पास गए, क्या ये उनका विचार ठीक है। तो ऋषिगणों ने बताया इंद्र को बुलाने के लिए खूब तपस्या कीजिए। और कुंती और पांडु ने एक वर्ष तक एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की इंद्र की प्रसन्नता के लिए। देखिए संतान उत्पन्न करना कितनी बड़ी जिम्मेवारी, जैसे कि प्रचेतस राजा प्रचिन परिषद के पुत्र थे, उनको भी जब आज्ञा दी गई कि आप ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करें तो वो तपस्या करने चले गए और पानी के अंदर जाकर उन्होंने तपस्या की, अपने हृदय को शुद्ध किया, तब वो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किए। इसी ढंग से दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को भेजा, जाओ प्रजा आगे बढ़ानी है लेकिन पहले जाओ तपस्या करने। वो तपस्या करने गए, वो अलग बात है कि नारद मुनि ने उनको ब्रह्मचारी बना दिया। जब अगला सेट किया उन्होंने 1,000 पुत्रों का, दक्ष प्रजा उत्पन्न करने बड़े दक्ष थे, फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, फिर उसी स्थान पर भेजा, जाओ जहां आपके बड़े भाई गए थे। वो डरे नहीं कि दोबारा से इनको ब्रह्मचारी ना बना दे, क्योंकि इतना जरूरी था प्रजा उत्पन्न करने के लिए अपने आप को शुद्ध करना। तो गए लेकिन फिर क्या कर दिया, नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दे। कहने का अर्थ है कि गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले इतनी तपस्या करनी पड़ती थी। इंद्र को बुलाने के लिए, इंद्र को खुश करने के लिए पांडु जी ने और कुंती ने एक टांग पे खड़े होकर 1 वर्ष के लिए तपस्या की। इंद्र प्रकट हो गए मंत्र के उच्चारण के बाद और फिर अर्जुन की उत्पत्ति हुई। और जब अर्जुन उत्पन्न हुए तो ऋषिगण आगे सब वहां पर, उन्होंने श्लोकों का उच्चारण किया, देवतागण फूल बरसा रहे हैं और सभी देवतागण अर्जुन को प्रणाम कर रहे हैं। ये देखकर सारे ऋषिगण वहां पर अचंभित हो गए, ऐसा था अर्जुन का जन्म। लेकिन पांडु फिर संतुष्ट नहीं हुए। पांडु ने बोला कुंती और बुलाओ देवताओं को। कुंती महारानी का चरित्र देखिए, बोलिए आपातकालीन स्थिति में मैं केवल 3 बार ये करूंगी, उसके बाद नहीं तो मुझसे मेरे धर्म का नाश होगा। तो पांडु ने बात ठीक मान ली उनकी बात। लेकिन बाद में माद्री ने पांडु से कहा कि मैं तो निसंतान रहेगी, मेरी भी इच्छा पूरी कीजिए, आप कुंती को बोलिए कि मुझे भी मंत्र कुछ सुना दे, सिखा दे, ताकि मैं भी देवताओं को बुला लूँ। और पांडु कुंती के पास गए, कुंती ने बोला ठीक है मैं कर दूंगी। लेकिन जब कुंती माद्री को मंत्र सिखा रही थी, माद्री ने थोड़ी चलाकी की, उसने बोला ये मेरी सौत है, किसी तरह से एक बारी मान गई है, दोबारा तो मानेंगे नहीं, तो मैं एक ही बारी में 2 पुत्र प्राप्त क्यों ना कर लूँ। तो उसने किसका स्मरण किया, अश्विनी कुमारों का, और अश्विनी कुमार के स्मरण से उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। लेकिन पांडु जी फिर संतुष्ट नहीं हुए। पांडु फिर गए कुंती के पास कि और संतान उत्पन्न कराओ माद्री से। तो अब कुंती ने बोला नहीं, ये जो माद्री है ये बहुत चलाक स्त्री है, बिना बताए इसने 2 देवताओं को बुला लिया, अगली बारी फिर से 2 को बुला लेगी, इसकी 4 संतान हो जाएंगी, मेरी 3 ही रहेंगी, हमने और मौका नहीं। तो वहीं पर रोक दे दिया। यहाँ पे युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई, वहां पे गंधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी उनके यहाँ पे एक बार व्यासदेव आए जो बहुत भूखे प्यासे थे। गंधारी ने बहुत उनकी सेवा की तो व्यासदेव प्रसन्न होकर उन्होंने गंधारी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 100 संतान होंगे। लेकिन जब गंधारी गर्भवती हुई तो 2 वर्ष तक उसके संतान गर्भ में ही रही, 2 वर्ष तक डिलीवरी नहीं हुई। और जब उसको मालूम चला कि युधिष्ठिर उत्पन्न हो गए तो गंधारी को बहुत गुस्सा आया, बहुत कुंठा हुई, बहुत द्वेष हुआ कि यहाँ पे भी युधिष्ठिर पहले आ गया और अब वो युवराज बन जाएगा। तो क्रोध में आके और द्वेष में आके उसने अपने पेट पे आक्रमण किया और उसका गर्भपात हुआ। और फिर उसने कहा गर्भपात हो गया तो व्यास जी का आशीर्वाद कैसे काम करेगा। लेकिन तभी व्यास जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उस मांस के लोथे को 100 भागों में बांट के अलग अलग मटकों में डाला और बंद कर दिया और बोला 2 साल के बाद इसमें संतान उत्पन्न होगी। 2 साल के बाद पहले मटके से निकले कौन, दुर्योधन। और जैसे दुर्योधन निकले तो क्या अशुभ लक्षण हो गए चारों तरफ, गधों ने रेंगना शुरू कर दिया जोर जोर से और जो सिंगार थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, गिद्धों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बिना किसी बात के चारों तरफ आग ही आग लग रही थी। धृतराष्ट्र ये देख के बड़े परेशान हो गए। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, भीष्म को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, क्या हो रहा है। तो विदुर ने कहा ऐसे लक्षण जब किसी संतान के उत्पन्न होने से होते हैं तो उसका मतलब वो कुल का नाश करने वाला है, तो सबसे अच्छी बात ये होगी इसको त्याग दो, तुम्हारे फिर भी 99 पुत्र हैं, इसको त्याग दो। और विदुर जी ने अपनी नीति बताई, एक परिवार की भलाई के लिए एक संतान को त्यागा जा सकता है, एक गांव की भलाई के लिए एक परिवार को त्यागा जा सकता है, एक देश की भलाई के लिए गांव को त्यागा जा सकता है, और आत्मा की भलाई के लिए शरीर पूरे विश्व को त्यागा जा सकता है, तो त्याग दो इसको। लेकिन धृतराष्ट्र इतना आसक्त था वो चुप रहा और उसने गंधारी को दुर्योधन दे दिया कि इसका पालन करो। और विदुर समझ गया कि अब कुरु वंश का नाश होने वाला है। तो इस कथा से हम क्या समझते हैं कि हम देखते हैं जिस प्रकार की मानसिकता स्त्री और पुरुष की होती है उसी मानसिकता की संतान उत्पन्न होती है। गांधारी ने बहुत द्वेष और कुंठा में अपने गर्भ पर आक्रमण किया तो दुर्योधन इत्यादि की उत्पत्ति हुई, और वहां पर उन्होंने देवताओं को बुलाया पूरी तपस्या करके तो कैसे पांडवों की उत्पत्ति हुई। तो आज के इस समाज में ये हमारी जिम्मेवारी है, ये पूरा समाज प्रभुपाद कहते हैं आशाहीन है, अंधकार में है, केवल एकमात्र आशा की किरण है हरे कृष्णा आंदोलन। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है पूरे समाज के सामने हम उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करें। तो एक तो परिवार की उत्पत्ति होती है पुरुष और स्त्री के संग से। एक शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य उदाहरण देते हैं कि जब एक शिष्य गुरु के संपर्क में आता है, अगर गुरु प्रामाणिक है और शिष्य निष्ठावान है तो जिस प्रकार से एक स्वस्थ स्त्री और पुरुष के संग से संतान की उत्पत्ति निश्चित है, उसी प्रकार से एक प्रामाणिक गुरु और एक निष्ठावान शिष्य के संपर्क में आने से शिष्य के हृदय में प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति निश्चित है। तो इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हृदय में हमारे प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो और हम सब अपने अपने क्षेत्र में आध्यात्मिक सर्वेंट लीडर्स के रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ राजा रथीतर को अपनी प्रजा की बहुत चिंता है, इसी प्रकार से हरेक सर्वेंट लीडर को ये चिंता होनी चाहिए कि जो उनके संरक्षण में भक्त हैं उनकी कैसे आध्यात्मिक प्रगति हो, उनकी कैसे क्वालिटी को हम बढ़ाएं। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हमने क्वालिटी भी बढ़ानी है और क्वांटिटी भी बढ़ानी है। एक बार प्रभुपाद जी पेरिस में आए, एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ पर एक रिपोर्टर ने बहुत ही शरारत करते हुए प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद संन्यास में आश्रम में है, बोला प्रभुपाद आपके कुछ पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे? तो प्रभुपाद ने बिना निसंकोच के कहा हाँ मेरे 1000 पुत्र हैं, और ये 1000 पुत्र बिना पत्नी से हैं। तो रिपोर्टर की आंखें बड़ी छोटी हुई है, बहुत बड़ा स्कैंडल मिलने वाला है। तो उसने बोला और ये 1000 पुत्र यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं? तो उन्होंने देखा सारे सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं और सब लोग बोले क्या जय शिला प्रभुपाद। तो वास्तव में जो गुरु की जो संपत्ति है, जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उनका भी अपना परिवार है। क्या परिवार है? कि अपने प्रचार से जो भक्त वो बनाते हैं वो उनकी संतान के समान है, और उनको इसी ढंग से देखना चाहिए इनको कैसे आगे प्रगति कराएं। तो जितनी मात्रा में प्रचारक शुद्ध होगा उतनी मात्रा में जिसको वो प्रचार करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा। इसलिए एक प्रचारक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमेशा अपने आप को शुद्ध चेतना में रखे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये कोई रिक्रिएशन नहीं है। जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष का आपस में संग करना कोई रिक्रिएशन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, उसी प्रकार प्रचार भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। प्रचार में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक बद जीव को कृष्ण के साथ जोड़ना। जितनी मात्रा में मैं शुद्ध तरीके से प्रयास करूंगा उतनी मात्रा में उसके हृदय में परिवर्तन होगा। तो शुद्धता का स्तर रखना। और दूसरा रथीतर के उदाहरण से हम सीखते हैं कि रथीतर को लगा कि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता तो उसने अंगिरा ऋषि के पास गए। प्रचारक की अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, लिमिटेशन हो सकती हैं। तो प्रचारक को लगे कि जिनके जो मेरे संरक्षण में भक्त हैं मैं इनको वो ज्ञान नहीं दे सकता, इनका हृदय मैं शुद्ध नहीं कर सकता। तो प्रचारक को संकोच नहीं करना चाहिए, अपने से वरिष्ठ, अपने बराबर, अपने से जूनियर कोई भी भक्त मिले उसकी सहायता ले, ताकि जो उसके संरक्षण में भक्त है वो आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बड़ी मानसिकता चाहिए, उत्कृष्ट चेतना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य एकमात्र ये होना चाहिए कि जो हमारे संरक्षण में है उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। इसके लिए मुझे किसी से भी सहायता लेनी पड़े सहायता लेने को मैं तैयार हूं। नहीं, ये हमारे हैं, केवल मैं ही देखूंगा तो क्या होगा? धृतराष्ट्र की मानसिकता होगी। धृतराष्ट्र बोले ठीक है इसको हम छोड़ नहीं पाएंगे तो दुर्योधन को रखो, और पूरे कुरु वंश का नाश करने का कारण बना। तो किस प्रकार से एक प्रचारक अपनी शुद्धता को रख सकता है? तो शिला प्रभुपाद जी जोर दिया करते थे कि अगर हम 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करें, 4 नियमों का सख्ती से पालन करें तो हम निश्चित रूप से और सेवा करते रहें हम भगवत धाम वापस जाएंगे, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो 4 नियमों का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। स्थूल रूप से पालन करना भी आजकल बहुत बड़ी चुनौती है, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, व्हाट्सएप, फेसबुक, धड़ाधड़ गंदगी बंबार्डमेंट होती है, उसमें कैसे अपने आप को बचा के रखना यह आसान काम नहीं है। और इससे भक्तों के संग में रहकर हमें इसके सख्ती से पालन करना चाहिए, और साथ में इसको बहुत ही सूक्ष्म स्तर से भी चार नियमों का पालन करना चाहिए। सूक्ष्म स्तर का अर्थ है जैसे कि हमारा नियम है किसी भी प्रकार का नशा नहीं, तो हर प्रकार के हम नशे से बचे ही बचे, लेकिन कहीं भी नशा करने की प्रवृत्ति भी ना आए इसका सूक्ष्म स्तर पर कैसे पालन कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के अहंकार से हम बचे, क्योंकि जो प्राइड है वो अपने आप में बहुत बड़ा नशा है। सफलता क्या, जो प्राइड है, अहंकार है, तो अहंकार से बचने का प्रयास करेगा। और हमारे में अहंकार आ रहा है और हम स्थूल रूप से पालन कर रहे हैं, लेकिन दिन ऐसा होगा कि वो स्थूल रूप से भी नियम टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले से इसको हम जड़ से रोक सकते हैं अहंकार से बच के। दूसरा हमारा नियम है नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार नहीं। मांसाहार करने का अर्थ है दूसरे जीवों को कष्ट देना, तो उसका सूक्ष्म रूप से हम पालन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रभुत्व को ना जताना, लॉर्डिंग ओवर ना करना, अपने आप अपनी श्रेष्ठता ना जताना, जब लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसीज से हमारा ये नियम टूट सकता है। तीसरा है नो गैम्बलिंग। नो गैम्बलिंग का हम सख्ती से पालन कर सकते हैं, किसी प्रकार के मनमाने ढंग से बात ना करना, विम्सिकल बिहेवियर, शास्त्रों की बात गई भाड़ में, जो मन कह रहा है करो। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गा मत प्रसादा तरिष्यसी अथ चे तुम अहंकार न शोषसी विनक्षसी। अगर तुम मेरी चेतना में रहते हो तो सारे के सारे दुर्गम जो भी आपके अटकले आ रहे हैं आपके जीवन में उसको आप पार कर लेंगे, लेकिन आप मेरी नहीं सुनते, अपने अहंकार की सुनते हो, विनक्षसी, तो विनक्ष होगा। तो हर कार्य करते हुए हमारे पास विकल्प है, या तो कृष्ण की सुने या अपने अहंकार की सुने। अपने अहंकार के सुनेंगे तो विम्सिकल बिहेवियर है, जो मन में आ रहा है हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, विनक्षसी, हमारी चेतना का नाश होगा। तो नो गैम्बलिंग मतलब नो विम्सिकल बिहेवियर। नो विम्सिकल बिहेवियर मीन्स गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलना। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध से बचना। अवैध संबंध से बचने का हम सूक्ष्म रूप से पालन कर सकते हैं कि भोगने की प्रवृत्ति से बचना, जो भोगने की प्रवृत्ति होगी वो हमें इस तरफ ले जाती है। तो इस प्रकार से अपने अस्तित्व को हम शुद्ध रखें, ये मनुष्य जीवन के लिए इसलिए मिला है, और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति। जब प्रजा की रचना करने के लिए यज्ञ दिए गए, कि जो प्रजा अपनी इच्छाओं को उत्पन्न कर सकता है यज्ञ के माध्यम से, मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल अपने अस्तित्व को शुद्ध करना है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं हमारा आंदोलन है अपने आप को शुद्ध करें और दूसरों को सहयोग दें शुद्ध होने में। तो ये संगीतन आंदोलन है, हम लोग भक्तों का संग करते हैं। भक्तों का संग का अर्थ है हम एक दूसरे की सहायता दें चेतना को उत्कृष्ट करने में, ना कि चेतना को नीचे लाने में। हम सबके अंदर एक हायर नेचर भी है और लोअर नेचर भी है। भक्तों का संग का अर्थ है एक दूसरे की हायर नेचर को एनकरेज करें, ना कि लोअर नेचर को। उसने गुस्सा किया और उसने भी गुस्सा किया, देखी गई नाले पे जा रहा जिसे कहते हैं, तो उससे ये संग नहीं है भक्तों का। तो एक दूसरे के हम चेतना को उत्कृष्ट करने में सहयोग दें। और आध्यात्मिक रूप से अगर चेतना उत्कृष्ट करने के लिए हमें किसी से सहायता लेनी है तो सहायता लेने में हिचकिचाना। निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति के लिए जैसे राजा रसितर ने सहायता ली अंगिरा ऋषि से, वो हम नहीं ले सकते, वो कलयुग में इसकी परामर्श नहीं दी गई, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसके हमेशा हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के श्लोक से हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी शुद्धता को मेंटेन रखें, क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम इस हरे कृष्ण आंदोलन में हैं, इस आंदोलन का हम पूरा लाभ उठाएं, और इस कलयुग में संकीर्तन के माध्यम से बहुत तीव्र गति से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। मैं अभी भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहा था, उसमें बहुत सुंदर श्लोक विवरण किया गया विष्णु पुराण से कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो विष्णु पुराण में उदित होता है सा हानि सच महाछिद्रम सा मोहम सच विभ्रम यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। अगर एक क्षण भी अगर वासुदेव को हम चिंता नहीं करते तो उसको सा हानि इस सृष्टि की सबसे बड़ी हानि बताई गई है। और एक क्षण भी हम वासुदेव का चिंतन नहीं करते हैं, वो इस संसार की सबसे बड़ी एनोमली क्या बोलेंगे, कमी बताई गई है, सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा छिद्र बताया गया है। हर एक क्षण भी हम वासुदेव का चिंतन में नहीं बताते तो वो सबसे बड़ा भ्रम बताया गया है। ये है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसका प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुद शुद्ध हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़े। अभी हम देख रहे थे किस प्रकार से होलीनेस भक्ति माधव गोविंद महाराज के साथ सब भक्त नाच रहे थे, कितने भक्त उपस्थित थे गुरु पूजा में, कैसा महसूस हो रहा था सबको, लग रहा था ना कितना खुशहाल परिवार है। और इस परिवार को और बढ़ाना है, कितने जितने लोग ऐसे नाचेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। तो कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का वितरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास समझाएं, उनको समझाएं जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर पुस्तकें दें और उसके बाद उनसे फॉलोअप करके उनको इस आंदोलन से जोड़ें। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हमको है, हमारा शुद्धिकरण होगा। और जब हम नए भक्तों को जोड़ते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, तो हमें फोर्स हो जाते हैं उनके सामने सही उदाहरण स्थापित करने के लिए, तो अपने आप हमें सुधार आता है। प्रभुपाद कहते हैं अगर बहुत हाई स्पीड से अपने आप को अपने भक्ति में बढ़ाना है तो क्या लो, कुछ जिम्मेवारी उठा लें। जिम्मेवारी उठाएंगे तो अपने आप शुद्धिकरण बहुत तेज गति से होगा, और जब तीव्र गति से शुद्धिकरण होगा तो उसमें बहुत से ऐसे आएंगे, क्षण आएंगे जो लगेगा ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, जब माँ बच्चे को नहलाती है तो प्यार से नहीं नहलाती, ऐसे दूर दूर से खूब रगड़ती है उसको, और बच्चा क्या कर रहा होता है, जोर जोर से रो रहा होता है, और माँ को मालूम है ये रोएगा, लेकिन उसके हाथ पैर पकड़ के उसके खूब मालिश करके और फिर बाद में बच्चे को आराम मिलता है। इसी ढंग से जब भगवान भी हमारा शुद्धिकरण करते हैं तो खूब हिलाएंगे, बोले हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना, कहीं जगह अपमान होगा, कहीं जगह अपयश फैलेगा, लेकिन होगा, लेकिन ये शुद्धिकरण के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, और फिर क्या होगा, बाद में हम चलेगा, ये भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए आइए हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें कि उन पे हम पे जो कृपा बरस रही है चैतन्य महाप्रभु की, उसको हम लाभ उठा सकें। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हम इस आंदोलन में हैं। कलयुग का सार ही है संकीर्तन। कलयुग तो दोषों का सागर है, चॉइस हमारे पास है, दोषों के सागर में डूबना है कि संकीर्तन के सागर में डूबना है। किसके सागर में डूबना चाहेंगे आप? संकीर्तन का सागर आनंद का सागर है, आनंदम बुद्धि वर्धन। तो उसके लिए क्या है, कुछ सावधानियां बरतनी है, अपने एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करनी है कि अपनी चेतना को शुद्ध कर सके, और फिर हम देखेंगे पूरे विश्व में हम क्रांति ला सकते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं ये संकीर्तन तब सफल होगा जब इस संकीर्तन करने वाले भक्तों की चेतना बड़ी शुद्ध होगी, बड़े शक्ति से वो नियमों का पालन कर रहे होंगे। जब बड़ा संकीर्तन होने लग रथ यात्रा से पहले बंगाल से भक्त आए जगन्नाथपुरी में, तो राजा प्रतापपुत्र सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य से पूछ रहे थे ये कौन कौन भक्त हैं, इनके शरीर से इतना दिव्य तेज कैसे निकल रहा है, और कितनी मधुर वाणी है, कितना मधुर कीर्तन है, ऐसे मधुर कीर्तन, ऐसी हरि ध्वनि, ऐसा दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। क्यों, फिर उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका कीर्तन इतना मधुर और दृश्य इतना, उनकी हरि ध्वनि इतनी प्रेममय थी क्योंकि सबके सब बहुत अच्छे ढंग से नियमों का पालन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोले हमारा पूरा आंदोलन निर्भर करता है किस ढंग से एक एक सदस्य शक्ति से 16 माला का जप और 4 नियमों का ध्यान पूर्वक जप और शक्ति से नियमों का पालन करेंगे, तो अपने आप हम माध्यम बनेंगे, अपने आप को भी शुद्ध करने का और दूसरों को भी शुद्ध करने का। और जो ग्रस्त आश्रम में भक्त हैं या ग्रस्त आश्रम में जाने वाले हैं, उनको पूरा प्रशिक्षण लेके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि उत्कृष्ट संतान की उत्पत्ति करनी है, उसके लिए जो संस्कार बताएंगे उनका पालन करें और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी?
यस, दो क्वेश्चन है। एक तो कुंती कहती है कि परपुरुष का संग नहीं करना है, ऊपर फिर उसके बाद देवताओं का संग करते हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास लग रहा है। और दूसरा, जैसे इंद्र को बुलाया गया भक्ति के लिए, और इंद्र के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो पुराने उन्होंने धोखा दे के किसी स्त्री का संग भी किया था, तो ये भक्त के लक्षण तो नहीं थे, तो इंद्र को क्यों बुलाया?
कुंती महारानी की इच्छा नहीं थी, इसलिए तभी से मान चाहते कुंती का चरित्र कितना महान है। पांडु की इच्छा थी और पांडु अपनी पत्नी से खुद कह रहे हैं आप लाइए। कुंती के मन में कोई कपट नहीं था, कोई व्यभिचार नहीं किया उन्होंने। पांडु की आज्ञा थी और पांडु की आज्ञा इसलिए थी कि कुल को आगे बढ़ाना है, आगे प्रजा की सेवा कर रहे, तो ऊंचे उद्देश्य के कारण कुंती जी ने तपस्या की। और राजा इंद्र के विषय में हम भागवत में बहुत सी ऐसी कथाएँ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इंद्र हम सबसे बहुत श्रेष्ठ हैं। ये तो इंद्र जी की विनम्रता है कि उनको उदाहरण के रूप में ऐसा यूज किया जाता है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि इंद्र कुछ भी नहीं है, हम लोग तो इंद्र से बहुत निकृष्ट हैं, बहुत बहुत निकृष्ट हैं। और क्योंकि कुंती महारानी के पास जो आशीर्वाद था केवल देवताओं को इन्वाइट करने का था, तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उनको इंद्र लगे। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मेरे अंति योगे योगे, भगवान तभी अवतरित होते हैं जब इंद्र को दिक्कत होती है। तो इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जो इंस्टेंसेस हैं वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। इंद्र का पूरे दिन में ऐसी घटनाएं नहीं घटती रहती जैसे हमारे जीवन में होती है। अलग अलग कल्प के अलग अलग इंद्रों की अलग अलग घटनाएं हैं कुछ ऐसे, ऐसे लेके हम उसी को पकड़ के बैठ जाएं और सबसे हम इंद्र से श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। इंद्र बहुत बड़े भक्त हैं, आसान किसी को पूरे यूनिवर्स की मैनेजमेंट देने के लिए ऐसे नहीं किसी को बैठा देंगे जिसका चरित्र ही नहीं है।
हरे कृष्णा, बाबा धन्यवाद भाई जी। जैसे आपने बताया था क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो दोनों चीज़ें हम कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे जब हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो क्वालिटी डाउन होती है, एंड देन क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो फिर क्वांटिटी, और मूवमेंट के लिए क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी। जैसे आपने बताया कि जितनी शुद्धता होगी उतना हम बैलेंस कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। तो दो तरीके हैं कि आपने गहराई से खोदना है कि ज़्यादा खोदना है। तो जितना गहराई में खोदेंगे अपने आप उसकी जड़ें और फैलती जाएंगी। तो पहले हम क्वालिटी पे करेंगे, जितनी हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी होगी क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। फिर भी प्रचारक को देखते रहना चाहिए, बैलेंस करते रहना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद ने बोला था 1975 में कब कि नाउ द टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क, बहुत एक्सपेंशन हो गया अब हमें रुक के बॉयल करना। तो अपनी कम्युनिटी में देख सकते हैं आप किस समय ज़्यादा ज़रूरत है ना। हमारे कम्युनिटी पंचायत विभाग में देखें तो बहुत से बक्के विषय खुल गया, सब हो गया, लेकिन अब हमें ज़रूरत है बॉइलिंग द मिल्क की, कि हर एक सदस्य को अपने अध्ययन को बढ़ाएं, अपने जब की क्वालिटी को बढ़ाएं। बहुत एक्सपेंशन हो गया, आप हर एक कम्युनिटी अलग अलग स्टेजेस पे होती है। ठीक है, पहले एक्सपेंशन कर लिया, अब उसको रुक के हमें अच्छे ढंग से इसको चर्निंग करना चाहिए, है ना, अपने हमें परिपक्वता लाएं। तो दोनों की आवश्यकता है। किस समय कई बार ज़्यादा जोर किसी पर दिया जाता है, किस पर थोड़ा कम। तो ऐसा नहीं कि जब क्वान्टिटी पर जोर दे रहे तो क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ ना लें, कम्प्रोमाइज़ तो कभी नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसे क्षण आ सकते हैं जिसमें हम क्वालिटी पर बहुत जोर दें कि सब लोग अब अध्ययन ज़्यादा करें, जब ज़्यादा बढ़ाएं। तो इसमें हमें आवश्यकता है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें।
हरे कृष्णा।
हाँ बोलिए, माइक आपके पास है, बोलिए।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया कि जैसे कि चेतन ने महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में 5 चीज़ें वर्जित हैं, उसमें से आपने बताया कि संन्यास लेना। तो हम देख रहे हैं कि अपनी संस्था में काफ़ी भक्त लोग संन्यास ले रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं?
समझना है, ये वैष्णव संन्यास अलग है। जो वैदिक संस्कृति का संन्यास है कि हर ग्रस्त को वानप्रस्थ पे लेना है, संन्यास में लेना है। तैयार है आप? संभव नहीं है क्योंकि आश्रम वर्णाश्रम रहा ही नहीं कोई। लेकिन कृष्ण के प्रचार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए संन्यास रिकमेंडेड है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद लिया, महाप्रभु चांदकाजी को बता नहीं, बाद में खुद भी लिया उन्होंने। भक्ति के प्रचार के लिए अलग है, वैष्णव संन्यास अलग है, और वैदिक संस्कृति का संसार एक अलग।
भागवत में प्रभुपाद बताते हैं कि लेडीज ऑफ हायर करेक्टर, उसमें गांधारी जी का एग्जांपल दिया जाता है, कुंती महारानी का, द्रौपदी का एग्जांपल दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मतलब गांधारी जी के ही ऐसा वो व्यवहार प्रकट करते हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
बड़ा अच्छा प्रश्न है। गांधारी जी को एक बताया जाता है कि ऊँचे चरित्र की स्त्री है और उनकी संतान ऐसे उत्पन्न हुई, तो कैसे समझे? तो इसका मतलब कि हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। गांधारी ने इतनी तपस्या की, उसको बालन चालन के पति अंधे हैं तो उन्हें आँखों में पट्टी बांध दी, कितनी बड़ी तपस्या है, पतिव्रता है, सती है। लेकिन एक वुमेनली नेचर है, स्त्री की नेचर है, कि आपने दूसरी स्त्री को देखा उसकी पहले संतान उत्पन्न हो गई तो ईर्ष्या को रोक नहीं पाई और उसका फल उनको भुगतना पड़ा। इसी रंग कहते हैं हिरण्यकश्यप जब तपस्या पे गए थे, बहुत बड़े असुर थे, लेकिन वहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ एक पक्षी आके बोलता था नमो नारायण है नमो नारायण है, तो हिरण्यकश्यप पक्षी को भगाते थे, फिर वो आता था नमो नारायण है नमो नारायण, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए तपस्या से वापस आ गए और कयाधु का संग कर रहे थे, तो कयाधु ने पूछा वापस क्यों आ गए, तो संग करते करते बोला वो आ गया नमो नारायण नमो नारायण बोल रहे थे, और जब वो संग करे नमो नारायण बोला और तभी गर्भ में कौन गए प्रहलाद महाराज। तो तो इस जंग से बहुत ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं जो ठीक है, गंधारी का अच्छा चरित्र था लेकिन वो अपने जो लोअर नेचर थी रोक नहीं पाई उससे उसका उसको फल भगत। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस सर,
कृष्णा बाबू जी आपने बताया कि संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष की चेतना शुद्ध होनी चाहिए, वही जो स्त्री और पुरुष जो उस होते हैं कृष्ण संतान उत्पत्ति से पहले कृष्ण भावना अमृत से नहीं जुड़े हुए थे और संतान को तो कोई अगर आप वो अगर वो कृष्ण भावना अमृत से जुड़े हैं जो उनकी औलाद है वो अगर उसे होते हैं अब वो उनको कैसे शुद्ध किया जाए?
बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, बिग चैलेंज। भगवान से प्रार्थना कीजिए और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है करिए, जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, गलती आपकी थी उसकी नहीं थी अज्ञानता में आप थे वो नहीं था, तो इसको समझना। हम तो बच्चे पे फोर्स करते हैं, मैंने माला शुरू कर दी तू क्यों नहीं कर, तो वो बोलेगा जब आप मेरे जितने थे आप करते थे निश्चित, हम भी नहीं करते थे उसे क्यों उपेक्षा करें वो करें, बहुत ही प्रेम से बहुत ही संभल कर मित्रता से, बहुत इसमें सेंसिटिविटी चाहिए। अधिकांशतः भक्तों के बच्चे अभक्त होते हैं, बड़ी दुख की बात है, इसी कारण से कोई माता पिता सोचते हैं मैंने शुरू कर दी ये क्यों नहीं करना, बोले पहले आपने पहले आप कहाँ थे, इसलिए उनके प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए, उनसे बड़े प्रेम से और तरीके से। दोनों उदाहरण हैं हमारे पास जिनके आने के बाद लोग अच्छे भी बने, तो बहुत सावधानी बरतनी है, मुश्किल तो है। ठीक है, अंतिम प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? अमृत मंदिर
वो माला भी कर रहे हैं लेकिन वो अपना फिल्में भी देख रहे हैं और सब चीज भी कर रहे हैं, अपना प्याज लहसुन भी खा रहे हैं लेकिन माला भी फिर भी कर रहे हैं और वो ऐसे ऐसे चल रहा है, उनका डामाडोल चल रहा है, उसमें ऐसे हम क्या कर सकते?
तो कल्चर की बात है और ये सब आप सब जो ग्रस्त आश्रम स्थित भक्त हैं आपको बैठ के आपस में चर्चा करनी चाहिए, किस प्रकार के स्कूल में बच्चे को भेजें, क्यों ना हम अपना स्कूल खोलें और बच्चे को अच्छे संस्कार दें, सारा टाइम वो स्कूल में बिताते हैं और फिर आके यहाँ पे तो घर में कुछ समय बिताता है, ट्यूशन में जाते हैं वहाँ उल्टा सीधा कल्चर, स्कूल में अलग कल्चर, कैसे बचेगा? तो बच्चे को बचाना है तो अच्छा हमें स्कूल चाहिए एक अच्छा, तो उसके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। हम सब ये आशा रखते हैं कोई आएगा स्कूल खोलेगा तो हम देखेंगे, तो आप आइए सामने आइए, पूरा आप सहयोग देने का सब तैयार है, आप आइए करें इसके ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अदरवाइज क्वालिटी कैसे आएगी बच्चों के?
हरे कृष्णा, चेतना का शुद्ध होना बहुत जरूरी, तो शुद्ध चेतना के स्तर पे तो फिर संतान उत्पत्ति की इच्छा होती ही नहीं ना।
नहीं, शुद्ध चेतना के स्तर पे अपने कर्तव्य को पालन करना, कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले ड्यूटी कॉन्शियस हो जाए, आप किस आश्रम में उस आश्रम का क्या कर्तव्य है पूरा करना जरूरी है ना।
तो जैसे कि प्रभु जी ने क्वेश्चन पुट किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एक कर्म संन्यास जो हो रहा है तो वो उसको एक्सक्यूज देकर के बाकी चार कर्मों को भी अगर लोग अप्लाई करने लग जाएं तो उसके पीछे क्या एक्सक्यूज दिया जाए कि संन्यास तो जैसे पांच महाप्रभु ने मना करे उसके बाद भी एक फॉलो कर रहे हैं हम ये एक्सक्यूज
नहीं एक फॉलो वो नहीं कर रहे हैं ना आपको समझाए ना वैष्णव संन्यास पद्धति अलग है प्रचार के लिए वो संन्यास
एक एक्सक्यूज दिया वैसे
एक्सक्यूज नहीं है एक्सक्यूज क्यों कह रहे हो ये वैलिड कारण है बहाना नहीं है ये अच्छा कारण ये एक उसका उद्देश्य है
तो बाकी चार कर्मों के लिए भी वैलिड कारण कोई दे सकता
नहीं कोई नहीं हो सकता क्योंकि हमारी कल्यों के जीव बहुत पतित है कर ही नहीं सकता केवल यही संकीर्तन में संन्यास ले सकता बस इस छूट इसी में मिली संकीर्तन आंदोलन का
तो इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी क्या कोई वर्ष हैगा
हाँ होगा निश्चित रूप से महाप्रभु ने अपने उदाहरण से ही सिखाया निश्चित रूप से महाप्रभु को ऐसे थोड़ी करेंगे ठीक है
थैंक यू
आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद भगवद्गीता मैराथन की हरे कृष्णा मूवी की जय गौर प्रेमानंदे आप सब भक्तों से निवेदन है कृपया करके प्रभुपाद जी को घर घर में पहुंचाना है हमने और प्रभुपाद जी कितने सुंदर सिद्धांत हैं कोई भी बदजीव से वंचित ना रहे ये हमारी जिम्मेवारी है इसलिए प्लीज़